نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے چوتھے پارے کا آغاز کریں گے. آج ہمارا لن تنالوا البر چوتھے پارے کا پہلا سبق ہے, آیت نمبر 92 سے 101, 92 سے 101 سورۃ آل عمران. پارہ شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح چند باتیں پہلے اس پارے کے بارے میں کہوں گی, اور آپ سب کو بھی اس بات کی دعوت دوں گی کہ آج اس بات کی نیت کریں کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بارے کا ایک سبق بھی مس نہ کریں. آج کے دور کے مسلمانوں کے مسائل اور ان کا حل, یہ اس بارے کا بنیادی تھیم ہے. ہم ہر وقت گلے شکوے کرتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اس نے یہ کہہ دیا اس نے یہ کہہ دیا, کسی نے ہمارے نبی کا مذاق بنا دیا, کسی نے کچھ کر دیا, لیکن اس کے جواب میں ہمیں کیا کرنا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو اتنی جرت کیسے ہوئی, یہ سب نہیں جانتے. یہ پارہ انشاءاللہ مجھے آپ کو یہ بتائے گا. اور اس پارے کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑے مسئلے فرقہ واریت سے نبٹنے کا نسخہ بتایا گیا. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا کوئی ایک سبق بھی مس نہ کروائے, ہم اس کو بہترین طریقے سے لیں. اور اس بارے سے پتہ چلتا ہے کہ رسول کی اطاعت کو ایک لمحے سے بھولنے کا نتیجہ شکست ہوتی ہے. اور اسی بارے میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کے دنیا سے چلے جانے کی خبر دی جا رہی ہے. محبتوں بھرا پا رہا ہے آپ, میں انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے اور دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے. آئیے چلتے ہیں آیتوں کے ساتھ. آیت 92, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں پسند ہے. دل میں آتا کیوں کریں, میرا تو چلا جائے گا, میرے ہاتھ سے تو نکل گیا تو پھر چلا گیا. تو ساتھ ہی تسلی دے دی, وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم, جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اس کو بخوبی جانتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ جب تک اپنی من پسند چیزیں اللہ کے راستے میں نہیں دیتی تب تک اس کو نیکی کی اصل روح نہیں مل سکتی. آپ نے بہت دفعہ اس آیت کو پڑھا اور سنا ہوگا, آج تھوڑا سا اس کے الفاظ میں لے چلتی ہوں تاکہ آپ دیکھیں کہ صرف قرآن پاک کے الفاظ کو ہی پڑھنے اور سمجھنے سے بہت ساری بات تو قرآن کی سمجھ آتی ہے. پہلے ہے لن, پیچھے ہم پڑھ چکے, شدت کے لیے بولا جاتا ہے مستقبل میں کسی کام کے نہ کرنے کے لیے. یعنی یہ نہیں کہا کہ لا تنالوا البر, لن تنالوا البر, تم ہرگز نہیں نیکی کو پہنچ سکتے, یعنی شور شارٹ شارٹ یہ ہوگا ایسا ہی ہے, اس کے علاوہ تم سوچو بھی نہ. تو پہلے تو اس پہ غور کر لے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز پہ نیور کہہ دے, جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اتنی شدت سے یا شد و مد سے کہہ دے تو وہ بات کتنی سچ ہوگی. اگلا لفظ ہے تنالو, دیکھنے میں مشکل لگ رہا ہے لیکن تنالو کا لفظ جو ہے نا وہی ہے جسے اردو میں ہم لفظ پڑھتے ہیں نائلہ. نائلہ کہتے ہیں پانے والی کو. تنالو نون یا لام اس کا روٹ ہے. ان نائلو ان نائلو کس کو کہتے ہیں, عطیہ یعنی تحفہ, جو کچھ انسان کو مل جائے یا پہنچ جائے. نالا کہتے ہیں اس نے پا لیا. نالا من عدوت مطلوبہ, اپنے دشمن کو جو نقصان دینا چاہتا تھا وہ پہنچا دیا. مقصد کے پورا کرنے کے لیے لفظ نائل آتا ہے. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ لفظ نائل کے نام سے ایک بہت معروف دریا بھی ہے, مصر کا دریا ہے, دریائے نیل کہتے ہیں. اسی طرح سے ازلم کا درخت جس سے نیل بنتا ہے, پاکستان میں کپڑوں کو نیل دیتے ہیں نا, یہ ایک درخت کے اندر سے نکلتا ہے یعنی اسے بنایا جاتا ہے, وہ بھی کہتے ہیں کہ لفظ اسی سے ہے. اچھا میں آپ سے اگر پوچھوں کہ کیا یہ لفظ آپ پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں, یاد کیجئے, لا ینال عہد الظالمین, کس نے کہا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. کس کو کہا تھا؟ اپنے پیارے خلیل اللہ کو کہا تھا. कब कहा था? जब उन्होंने कहा था कि अल्लाह अगर मुझे इमाम बनाया तो क्या मेरी उम्मत को भी इमामत के लिए चुना है? तो कहा था नहीं, ला यनालु अहदे जालिमीन, जालिमों पे मेरा ये वादा नहीं है, बाकियों को तो और होगा, यानी जो मेरे कवानीन को तोड़ेंगे उनको मैं ये चीज नहीं दूंगा, और बाकियों के लिए तो है ही है, आगे भी आएगा जहां फिर वहां बता दूंगी इंशाल्लाह। अगला लफ्ज देखिए अलबिर, ये है असल में इस पूरे हिस्से का खूबसूरत नुक्ता, और वो क्या है, बिर का लफ्ज पीछे पड़ा है आपने, लैसल बिर्रा अंतवल्लु वजूहकुम, तो वही लफ्ज है बारारा से, बरर कहते हैं वुस्सत को, फराखी को, कुशादगी को, वो सारी लफ्जी वजाहत हमने देख ली थी कि बाहर के मुकाबले में बर है। अच्छा, जब आप दरिया में या समंदर में काफी टाइम गुजारने के बाद बाहर आते हैं तो क्या एहसास होता है? सुकून, शुक्र है आज डूबने से बच गए, पांव जमीन पे लग गए। तो बिर क्या है? वो नेकी जो सुकून दे, रूह को सुकून देने वाली नेकियां। यहां बिर से क्या मुराद है? बहुत सारे लफ्ज हैं इसके अंदर, नेकी को, जन्नत को, खैरे कसीर को, अल्लाह की रजा को, अल्लाह ताला की बताई हुई हर खैर को तुम नहीं पहुंच सकते। यानी इतना खूबसूरत लफ्ज, अगर हम सिंपल कहते ना तुम नेकी को नहीं पहुंच सकते तो लोग कहेंगे नहीं पहुंच सकते तो ना पहुंचे, नेकियां नहीं मिलती तो फिर ना मिले, हमने क्या करना है। लेकिन जब आप कहते हैं तुम जन्नत को नहीं पा सकते, तुम अल्लाह की रजा को नहीं पा सकते, तुम खैरे कसीर को नहीं पा सकते, कब तक? जब तक कि तुम अपनी मन पसंद चीजें पसंद ना करो, और तुम कुशादगी को नहीं पा सकते। अगर इसके लफ्ज में जाए ना, इतनी बड़ी खबर है इसके अंदर कि तुम कुशादगी और वुस्सत को पा ही नहीं सकते जब तक कि तुम अपनी मन पसंद चीज अल्लाह के रास्ते में ना दे दो। आप देखिए कि जब भी लफ्ज आता है खर्च करने का, तुम्हारे दिमाग में रुपए, पाउंड्स, क्रोन, डॉलर्स, वो भी है, हमें नोट से क्या मोहब्बत हो सकती है? असल में उस नोट की वैल्यू से मोहब्बत होती है। अब डॉलर का नोट है, आप उसको चूमेंगे, चाटेंगे, स्मेल आएगी आपको उसमें से पेंट की? नहीं, आप कहते नहीं, इस डॉलर को देने से मैं अपनी पसंद की चीजें ले सकती हूँ। तो सिर्फ कैश नहीं, क्रॉप की सूरत में इंसान हर वो चीज जो उसको पसंद हो उसको अल्लाह के रास्ते में दे। अपनी नींद आपको प्यारी थी, आप अल्लाह के लिए छोड़ के आगे, आपको कई खाने पसंद थे, बाद में पता चला कि वो ठीक नहीं है, ये सब कुछ कर करा के अपने आप को हम सब अगर इस चीज के साथ जोड़ के देखें ना, तो हमें अपनी जिंदगी का खुलासा समझ आता है। जज्बे, मादी चीजें, रूहानी चीजें, स्किल्स, सलाहियतें, यानी मुझे ऐसे लगता है कि ये आयत बंदे का पोल खोलती है। सीधी सी बात है, हम उस चीज पे हर चीज खर्च करने को तैयार होते हैं जिससे हमें मोहब्बत हो। एक झूठी मोहब्बत पे लोग कहते हैं तेरे ऊपर जमीन और आसमान कुर्बान, तुझे खुश कर दूं, सबको नाराज कर दूं, ऐसी उल्टी सीधी बातें लोग एक दूसरे को कहते फिरते हैं। जरा सोचिए तो सही कि जिसने हमें सब कुछ दिया, क्या फिर हम उसके रास्ते में नहीं खर्च करेंगे? बाज़ लोग कहते हैं सिर्फ मजहबी रिचुअल्स यानी मजहबी शायर को रस्मी तौर पर अदा करने का नाम बिर है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। गलत फहमी है। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि तुम नेकी की असल शक्ल पे तब पहुंचोगे जब तुम अल्लाह के रास्ते में अपनी हर खूबसूरत पसंदीदा चीज को खर्च करोगे। कौन सी? हत्ता तुनफिकू, तुनफिकू का और हत्ता का लफ्ज क्या है? अंटिल के मानों में, कई मुख्तलिफ मानों में आते हैं, लिख लीजिए, दो तीन मानी आपके काम आएंगे इंशाल्लाह। हत्ता क्या? पहला मानी के यहां तक के, यहां तक के। सूरत कसस में आप पढ़ेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का कॉल है, قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى। यहां लन नब्रह का जो लफ्ज है ना, मूसा और बनी इसराइल के किस्से में, यहां लफ्ज वही है, हत्ता इसी में आ गया। फिर इस तरह इसके बाद दफा मानी होते हैं ताके, ताके, जैसे वला यज़ालून युकातिलूनकुम हत्ता यरुद्दूकुम अन दीनिकुम इन इस्तताऊ। फिर इसी तरह से बाज़ औक़ात इल्ला के मानों में भी आता है, इल्ला सिवाय इसके के मानों में, ठीक है। फिर इसी तरह बाज़ औक़ात ये वाओ के मानों में आता है, यानी और, एंड के मानों में इंग्लिश में। फ़ाइज़ा लकीतुम अल्लज़ीन कफरू फ़दर्बर रिक़ाब हत्ता इज़ा, यहाँ देखिए हत्ता का लफ्ज आ गया इसके अंदर। फिर इसी तरह बाज़ दफ़ा कलाम की इब्तदा में आता है, जैसे बात शुरू करनी होती है, सूरत नमल में हम पढ़ेंगे हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल, तो यहां फिर हत्ता से मानी क्या है, यहां तक के पहला मानी, यानी अगर तुम वाकई नेकी की रूह को पाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, तुनफिकु, नफक से खर्च करो, एक दरवाजा खोल दो, सिरा खोल दो और उधर से माल जाए और दूसरी तरफ से निकल जाए। नाफका में कलब से हम बड़ी डिटेल से पीछे पड़ चुके, या मुराद क्या है कि देना, स्पेंड करो, खर्च करो, अल्लाह के रास्तों में दो, हर वो चीज जिसको देते वक्त तुम्हारे दिल पे चोट पड़े मान लो कि ये तुमने अल्लाह की मोहब्बत में दी है। हत्ता तुनफिकू, यहां तक तो बात हमने इतनी दफा पढ़ी तीसरे बारे में, पूरे तीन चार रुकू पढ़ लिए अल्हम्दुलिल्लाह। यहां एक मुख्तलिफ चीज है, मिम्मा, ये जो लफ्ज मिम्मा है ना, इसकी तफसीर बड़ी अहम है यहाँ, क्योंकि इसकी तफसीर समझ ना आएगी तो बात नहीं बनेगी। मिन मा के, मिन और मा, मिन क्या है, से, किसी चीज का कुछ हिस्सा। इसी तरह से मिन जो लफ्ज है ना, इसका एक मानी होता है बास, सम ऑफ। अगर आप इस मिन के मानी को यहां इस रंग में रखें कि कुछ के मानों में कुछ तो दे दो, तो मानी क्या है, 100 है उसमें से कुछ अल्लाह के रास्ते में दे दो। बास दफा मिन बयान के लिए आता है, कुल के मानों में तबईस, अगर ये मानी ले लू ना तो फिर मतलब कि जो जो पसंद है सब दे दो। फर्क समझ आया आपको, मिन के दो तर्जुमे याद रखें अभी फिलहाल, एक होता है कुछ, एक होता है सब कुछ, बात वाज है। तो पहली तमाने को लेंगे तो क्या मानी होगा कि जो पसंद है उसमें से कुछ तो दे दो, दूसरी सूरत क्या है कि सब कुछ दे दो, और सही बात क्या है, आप क्या सोचते हैं, कितने लोग कहते हैं कि कुछ भी दे दो हाथ खड़ा करें, और कौन कहते हैं कि सब कुछ दे दो वो हाथ खड़ा करें, और जिन्होंने कहीं हाथ नहीं खड़े वो क्या कहते हैं, कोई एक बोले। देखिए मैं आप दोनों से इत्तफाक नहीं करती, पूछिए क्यों, वक्त और मौके के लिहाज से, जब सब कुछ देना पड़े तो सब कुछ दे दो। अबू बकर की मिसाल है, तबुक के सफर में मौका बड़ा सख्त था, लेकिन बाकी जंगों में अबू बकर ने नहीं दिया तो वहां जरूरत नहीं थी। तो जब इस्लाम को सब कुछ की जरूरत हो तो सब कुछ दे दो, फिर दे देगा अल्लाह। वल्लाह ही आप अपना अकाउंट खाली करके देखें, अल्लाह फिर भर देगा। आप अपनी अलमारी खाली करें, अल्लाह उसको फिर भर देगा। लोगों को ये नुस्खा ही नहीं आज तक समझ आया, जहेज की चीजें अभी तक सीने से लगाए बैठी हैं। चंद दिन पहले हम बात कर रहे थे ऐसे कहीं, तो बात हो रही थी, तो सिस्टर्स थी कुछ, तो किसी शादी की तैयारियों की बात कर रही थी, तो मैंने कहा कि शादी की तैयारी आपने करनी करानी है तो आपके अपने कपड़े किधर हैं। हर बात होते गए और वो यही अपने गम क्या था उनका, 40-50 हजार से कम जोड़ा नहीं बनता। मैं कहा इतनी अब दुखी हैं सिस्टर्स, 50 हजार रुपए का एक आम जोड़ा बन रहा है जो कि आम लोगों का। मैंने कहा ये बताएं कि आपके शादियों के जोड़े किधर हैं। कहती दिल भी चाहता है करीब की शादी है तो भारी जोड़े पहने, तो मैंने कहा शादी से भारी जोड़े तो कहीं नहीं बनते, तो आपके अपने शादियों के जोड़े किधर हैं। कहती नहीं वो तो नहीं ना पहन सकते, तो वो इधर से हैं, वो उधर से हैं, वो इधर है। मैंने कहा आप एक काम करें, आप सब एक दूसरे का पहन लें। वो उसका कजन ही थी सारी, तो मैंने कहा और सबको बताएं भी कि मैंने उसका पहनना, मैंने उसका पहनना। एक दो बोली, कहती हमने तो अपने में पूरा ही नहीं आना अब। लेकिन आप गौर करके देखें कि एक इंसान जब खर्च करता है तो बाज़ औक़ात अपनी ज़ात पे 50 हजार रुपये लगाना कितनी बड़ी आसानी बात है। 50 हजार कितना होता है यहाँ का, 500-450 हो गया आई थिंक सो, अगर मेरा हिसाब ठीक है तो ऐसे ही है, देखे हिसाब रखा हुआ इन्होंने। अब आप सोचिए कि जब बंदे को आम हालात होते हैं, आप अपनी ज़ात पे कुछ लगा रहे हैं तो कुछ अल्लाह के रास्ते में भी देते हैं, लेकिन तबूक जैसा मौका हो तो उस वक्त क्या किया जाएगा, मिन को कुल के मानों में लेंगे। तो हिब्बून, जो तुमको पसंद है, जो तुमको महबूब है। और जब दिल छोटा होने लगे तो कह दिया गम ना करो, वमा तुनफिकु मिन शयइन फइन्नल्लाह बिही अलीम, तुम जो कुछ भी खर्च करोगे अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। सुभानअल्लाह, इतनी खूबसूरत रियायत है, महबूब के रास्ते में अपनी पसंदीदा चीज दे दो ताकि उसको महबूब हो जाओ। लिख लें ये जुमला, महबूब के रास्ते में अपनी महबूब तरीन चीज दे दो ताकि तुम उसको महबूब बन जाओ। देखिए दुनिया में हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो क्या करते हैं, हम कहते हैं आप पहनेंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी, आप खाएंगे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। क्यों भला, क्योंकि आपको उससे मोहब्बत है, है ना। अब जब अगला बंदा वो चीज आपका तोहफा दिया हुआ इस्तेमाल करता है तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, आपके दिल में उसकी मोहब्बत, उसके दिल में आपकी मोहब्बत, तहातु तहाबु, हदीस में तो ये बात मौजूद है। अब जब आप अल्लाह सुबहाना ताला के लिए कोई मिसाल तो नहीं है इंसानों वाली, आप अल्लाह ताला को इस हदीस की रोशनी में रखें कि जब हम तोहफा देते हैं तो मोहब्बत बढ़ती है, बिल्कुल यहाँ वो हदीस फिट होती है, अगर नहीं लिखी भी तो लिख ले। तहातु तहाबु, तोहफा दो, हदिया दो, मोहब्बत बढ़ेगी। यहाँ असल में ये बच्चे खुचे देने की बात नहीं है, ये गिफ्ट देने की बात है। और गिफ्ट बंदा किसी मौके पे देता है, कब? जब उसको महसूस होता है कि मैंने अगले बंदे को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाना है। अल्लाह सुबहाना ताला ने सब कुछ मुझे आपको दिया, जिस तरह मुझे दिया इसी तरह अल्लाह सबको दे सकता है, लेकिन अल्लाह ताला हमें दे कर कहता है अब तुम इसमें से उनको दो जो तुम्हें लगता है कि इस चीज से महरूम है। यकीन करें इस आयत की तफसील ना तो आप किसी दूसरे इंसान से सीख सकते हैं, ना आप किसी इसकी ग्रामर की बात से समझ सकते हैं, ये आयत आपको तब समझ आएगी जब आपको अल्लाह से मोहब्बत महसूस होगी। वो कहते हैं ना, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी, अंदर मोहब्बत आती है ना, जज्बे आते हैं। लोग कहते हैं खूबसूरत लफ्ज कैसे आते हैं मुंह पे, खूबसूरत जज्बों से आते हैं। दिल खूबसूरत कर लीजिए, जुबान खूबसूरत होगी, दिल नरम कर लीजिए, जुबान नरम हो जाएगी। जब अल्लाह से मोहब्बत होगी तो बताना नहीं पड़ेगा, मौलवियों से फतवे नहीं लेने पड़ेंगे, 100 में से 250 निकालने हैं, मोतियों का वजन अलग करें, डोरियों को अलग करें, नए पुराने सोने की कीमत का फर्क करें, क्या करें, हमें बताएं हम ज़कात किस पे दें। और सोच कह रहे होते हैं हम बहुत केयरफुल लोग हैं, हम कितनी सोच समझ के ज़कात अदा कर रहे हैं कि कहीं ज्यादा ना चली जाए। तो जिसके दिल में मोहब्बत है वो जमा तफरीक करता है। वो एक शेर है, मुझे याद नहीं है, अलामा इकबाल का, ये फारसी का, जिसका खुलासा ये कि तू गनी है तू जान हिसाब कमो बेश, मुझे नहीं पता, मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया। गिन गिन के नेकियां करेंगे तो गिन गिन के वहां अजर मिलेगा, गिन गिन के देंगे गिन गिन के मिलेगा। इस पर इतनी प्यारी रिवायतें हैं जो अलग से एक मौजू का तकाजा करती हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी अजवाज में से भी एक को कहा था कि गिन गिन के ना दे, अल्लाह तुझे गिन गिन के देगा। फिर इसी तरह आपकी एक जौजा थी तो आपने उनको कहा कि थैली का मुंह ढीला कर दे, विया कहते हैं गुथली को, वो जो हमारी नानियों के पास होती थी ना, नाले के साथ बांधी हुई गुथली, उसमें से पैसे लेके हम जाते थे चीज लेने के लिए, तो वो गुथली को विया कहते हैं। तो आपने फरमाया कि डोरियां ढीली कर दो विया की, बर्तन की, ये जो कान है ना इसको भी विया कहते हैं। कुरान में सारे लफ्ज सूरत यूसुफ में भी आप पढ़ेंगे। क्या मतलब पता चला सारी इतनी बात का, कि उम्मत वसत बनना है ना तो फिर तुम्हें अल्लाह के रास्ते में कुछ करना पड़ेगा। याद रखिए ये आयतें जहां नाजिल हो रही थी वहां मुसलमानों के लिए हालात को इतने सूटेबल नहीं थे। हजरत अबू तलहा अंसारी जो मदीना में बहुत साहिब हैसियत शख्स माने जाते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे बैरहा बाग बहुत प्यारा लगता है। बैरहा, बेर कहते हैं बाग को, सॉरी बेर कहते हैं कुएं को, तो बैरहा इनका बाग क्यों था, क्योंकि उसमें कुआं भी था मीठे पानी का, आमतौर पे मदीना के बागों में ऐसा नहीं होता था। तो अल्लाह के नबी को कहने लगे कि मैं इसको अल्लाह की रजा के लिए सदका करता हूँ। आपने फरमाया वो तो बड़ा नफे बख्श माल है, यानी कि इतना प्रॉफिटेबल है, तुम्हें तो उससे हर साल इतना फायदा होता है, क्योंकि खजूरों के दरख्त, एक तो ऐसा कह लीजिए ना, चलती फिरती अपनी खेती, या अपनी टैक्सी को दे आए तो फिर कमाएगा कहाँ से, या अपनी फैक्ट्री की चाबियां किसी को दे आए तो आगे से कमाएगा कैसे। तो आपने फरमाया कि मेरी राय यह है कि तुम इसे अपने रिश्तेदारों में तकसीम कर दो। नबी सल्लम के मशवरे पर उसको अपने चचाजाद भाइयों में और दूसरे रिश्तेदारों में तकसीम किया। ये मुसनद अहमद की रिवायत है। कितना मुश्किल है, देखिए मस्जिद में जाके चाबी दे आना आसान है, किसी इंस्टीट्यूट को जाके घर की चाबी दे आना बहुत आसान है, पता है जी अल्लाह का काम होगा, दीन का काम होगा, लोग पढ़ेंगे लिखेंगे सीखेंगे, बट अपने ही रिश्तेदार और शरीके के रिश्तेदार जिनसे अमूमन जिंदगी में तकलीफें ही पहुंचती हैं उनको दे आना और खुद खाली हो जाना, ये तो बड़े दिल वाले लोग कर सकते हैं। कल तक मेरी थी अब मेरी नहीं रही, अल्लाह के नबी के इस मशरे पे अमल किया और दे दिया। इसी तरह इस आयत के ऊपर हर सहाबी ने अपने दिल को टटोला, हजरत उमर फारूक, हजरत इब्ने उमर, हजरत अबू दाहदा की बातें आती है, हर एक ने अपनी मन पसंद चीजें दे दी कि हम अपनी पसंद की चीजें देंगे। कल यह आयत उतरी थी, सहाबा ने ये कुछ किया, इतना कुछ उनका मेयार था कि भाई जो पसंदीदा है वो दे देते हैं, और हम क्या करते हैं जरा सोचिए, छाटते हैं, काटते हैं, नोचते हैं। देखिए वो आप अपनी मजबूरी के लिए दे रहे हैं, सवाब उसका भी है। अब यहां मैं वही इश्यू जो पीछे भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, हर खर्च का अजर है। आप कहेंगे अच्छा फिर पुराने कपड़े देते हैं तो अजर नहीं है? नहीं अजर है। फरमाया जब कोई कपड़ा किसी को दो तो जब तक दूसरे के तन पे रहेगा तो वो जो नेकी करेगा उसका अजर आपको भी मिलेगा। तो जब भी किसी को दें तो श्योरिटी करके दें कि आपके कपड़ों को जाके ये जाया नहीं कर देंगे, उसको पहनेंगे, इस्तेमाल करेंगे, नेकियां करेंगे। अच्छा, हम अमूमन किसी को कोई चीज दे ना, अच्छी चीज किसको कहते हैं? जो किसी ने दो दफा पहननी है फिर छोड़ देनी है, अलमारी में लटकी रहनी है, रोज वो पहन नहीं सकता। अगर आपने किसी को अच्छी चीज देनी है ना, तो वो चीज दें जो वो रोज पहने, इस्तेमाल करे और आप उसकी नेकियों में हिस्सेदार बने। यानी ये तो एक पूरी साइकोलॉजिकली मैं कहती हूँ एक पूरा एक सेटअप है कि इंसान अपनी नेकी को कैसे बढ़ा सकता है। आप किसी को खाने के लुक में देते हैं, कोई एक वक्त का खाना खाता है, 6 घंटे तक उसके जिस्म में से मुख्तलिफ मराहल से गुजर के वो खाना ग्लूकोज में बदल जाता है, 2-3 दिन तक उसकी एनर्जी बॉडी में रहती है, जो काम करेगा उसके दौरान इंशाल्लाह आपको उसका अजर मिलेगा। इसीलिए तो अत्तमुत्ताम खिलाने की खूबी है। आप किसी को कुरान का एक लफ्ज़ सिखाने में मददगार होते हैं और वो कुरान सीख जाता है आपके पैसों से, आप किसी को स्पॉन्सर कर देते हैं, जब तक वो जिंदगी में कुरान पढ़ता रहेगा आपको उसका अजर होगा। खाना 3 दिन तक पेट में रहा, कुरान कब तक सीने में रहेगा? अक्लमंद लोग जो होते हैं ना, वो अपनी चीजों को बड़ी अक्लमंदी से डिस्पोज करते हैं, और बेवकूफ लोग उसको बोरों में डाल के ना थैलों में रख देते हैं, अब कोई आता जाता हमारा गंद उठाए, क्योंकि हमने अलमारियों में नए कपड़े लगाने हैं या हमने अब नए बर्तन लगाने हैं। हमेशा याद रखिए, एक अक्लमंद किसान की तरह बीज डालने से पहले जमीन को देखिए, नरम है, हमवार है, और सबसे बड़ी हमारी खेती जो इस वक्त हमारे हाथ में, हमारा वक्त, हमारी जिंदगी। मेरे लिए काबिले रहम है वो लोग कि जो अपनी जिंदगी की इस दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं कर रहे। काबिले अफसोस हैं वो लोग जो अपनी स्किल्स को जाया करके घरों में बैठे होते हैं। किसी को तो फायदा दे सकते हैं ना, किसी इंसान को, किसी इदारे को। आप देखिए हम दुनिया के पीछे कितना रुलते हैं ना, सच्ची जो बातें रुलते हैं। कोई शौक से थोड़ी सुबह 7 बजे उठ के जाता है, 2-3 दिन पहले फिर मैंने वही मंजर देखा जो मैंने कई दफा जिक्र किया है। चूंकि आजकल फजर भी जरा देर से ही हो रही है ना, तो मेरे हस्बैंड जिस वक्त मस्जिद में जा रहे थे, दे रहा था, तो हमारे ऊपर जो एक और शख्स रहते हैं वो नॉन मुस्लिम है, उसी वक्त उनकी गाड़ी भी निकली, तो वो अपने काम पे गए होंगे। मेहनत करते हैं ना, दुनिया के लिए जो मेहनत करता है इंसान, उसका फल दुनिया में मिल जाता है जितना अल्लाह चाहता है। लेकिन कितने लोग हैं जिनको अल्लाह सुबहान तआला ने आखरत के अजर की उम्मीद दिलाई हुई और वो सो रहे होते हैं। हदीस में आता है कि फजर के लिए मस्जिद में जाने वाले को क्यामत के दिन नूर की खुशखबरियां दे दो। अंधेरे में जाते हैं, ठोकरे लग सकती हैं, अल्लाह ना करे चोट लग सकती है, बट आज कितनी माएं हैं जो अपने बेटों को फजर के लिए भेजती हैं। आज आपके कितने घरों में से मर्द गए मस्जिद में, किसका बेटा गया, किसका भाई गया, किसका शौहर गया? कहां से नूर आए उम्मत में, कहां से उम्मत मुस्लिमा के हालात बदले? याद रखिए, आज ये पारा शुरू हुआ है ये मेरी आपकी आंखें खोलने के लिए। उस वक्त हम सारे उठ जाते हैं जब दुनिया के इदारे खुलते हैं, जब दुनिया के स्कूल्स खुलते हैं, जब दुनिया की शॉपिंग मॉल्स खुलते हैं, जब अल्लाह नूर बांटने वाली जगहों पे फजर में कहता है सलातु खैरु मिनन नौम, उस वक्त मस्जिदें रो रही होती हैं। वल्लाही मैं पूरे शौर से कह सकती हूँ, अगर मस्जिद कोई महसूस करने वाली या बोलने वाली जगह होती तो फजर के वक्त उसके इर्द गिर्द रहने वालों को वहां से हिचकियों की आवाजें आती होंगी। ये मैं आपको कोई एग्जेजरेशन में नहीं कह रही, ये मैं अपने दिल के लफ्ज बोल रही हूँ। यहाँ रिवाज ही नहीं है, जाते ही नहीं है। मैं अमेरिका में जब तक रही, अक्सर जब हम स्पेशली अपनी जगह पे सेटल डाउन थे यहाँ आने से पहले, मैं फजर में साथ जाती थी, ईशा में भी जाती थी, मगरिब में भी जाती थी। यकीन करें कि 1, 2, 4, 6 नमाजी। मैं कहती हूँ जरा सा शऊर को हिलाए ना हम सब, तो सारा दिन क्या मांग रहे हैं? कामयाबी। हमारे बच्चे सक्सेस के लिए निकलते हैं ना, अल्लाह ताला दिन में 5 बार पुकार लगाते हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, कम टू सलात, कम टू सक्सेस, कामयाबी की तरफ आओ। क्या हमारे बच्चे कामयाब हो सकते हैं अगर वो अल्लाह की नजरों में बुरे नहीं है? तो अपने बच्चों को, अपनी औलादों को अल्लाह के रास्ते में लगाना है। देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा था बेटे को ज़बह कर दो, कहा था ना, हमें तो नहीं अल्लाह कहता। आज कोई अपने बच्चे को ज़बह करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। हर वक्त तो बेटे जंगों में, जिहादों में भेजे भी नहीं जाते, और वल्लाही जो आज मस्जिद में नहीं जा पा रहा वो कल जंग में कहाँ जाएगा? आज मौज़िन की आवाज़ नींद खुलवा रही, कल दुश्मन का बिगल उसको कहाँ उठाएगा? ये जो फजर की नमाज की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, जिसमें नींद की भी कुर्बानी है, वक्त की भी कुर्बानी है, स्किल्स की भी, क्या कुछ है। कई दफा उसके बाद बंदे को वक्त होता है भी जॉब पे जाने पे, फिर क्या करूं, सारा दिन काम में दिल नहीं लगेगा, चल सो जाओ, सूरज निकलेगा तो पढ़ लेंगे। ये बात अपने ऊपर रख के सोचिए, ये असल में ट्रेनिंग कोर्स था। लन तनालुल बिर हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, तुम्हें अपनी मनपसंद चीजें देनी पड़ेंगी। आपको अपने बेटे प्यारे हैं, आपको उनको मस्जिदों की नमाज का आदि बनाना पड़ेगा। फिर वो आपकी भी आंखों की ठंडक होंगे, फिर वो उम्मत की भी ठंडक होंगे, वो फिर नबी सल्लम की सिफारिश के भी उम्मीदवार होंगे इंशाल्लाह। और आप अपने बच्चे को स्कूल के लिए तो उठाएं बड़े प्यार से गुदगुदाते हुए, और फजर के लिए ना उठाएं तो मान लीजिए आप उसकी सगी माँ नहीं है फिर। सौतेली माएँ हों वो अच्छी जो फजर के लिए उठाएं, उन सगी माओ से जिनको फजर के वक्त अपने बच्चों पे रहम आए। अब इस जुमले को जिस रिश्ते पे लगाने लगा लीजिए, मुझे कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मैं ये पूरे यकीन और कॉन्फिडेंस से कहूँगी। सारा दिन हम लोगों को सुनाते हैं गम दुख परेशानियाँ बीमारियाँ, मशवरे मांगेंगे, डॉक्टर किधर अच्छा है, किसको दिखाऊं, क्या करूं। लंदनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन, रात का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ो अपनी नींद को और रब को सुनाओ जाकर। हम लोगों को कहते हैं बच्चियां घर बैठी हैं, जवान हैं, इनके रिश्ते करा दो, किधर करें, हुए हुए रिश्तों पे हम परेशान हैं, कौन आपकी मदद करेगा। लंदनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बुन, अपने सच्चे जज्बे, मोहब्बत भरे जज्बे, प्यार के जज्बे रब को दे दें। ये चंद दिन की जिंदगी रह गई है मेरे आपके हाथ में, करोड़ों हमारे पास होता है, करोड़ों वल्लाही करोड़ों होता है, और हम 10-10 करोड़ और जमा करने के ख्वाब देखते हैं। जमीनों के मरले क्या, कनाल क्या, एकड़ क्या, पूरे पूरी बस्तियां हमारी होती हैं, हम फिर एक और बस्ती बनाने के लिए रुलते हैं, वल्लाही रुलते हैं। जॉब वाले हमें फजर पे बुलाएंगे, हम फजर पे जाने को तैयार हैं, वो रात 12 बजे तक रोकेंगे, हम रुकने को तैयार हैं, लेकिन जहां अल्लाह का मामला आता है तो हम कहते हैं अभी कोई वक्त है बल नमाज पढ़ने का। गर्मियों की इशा याद करें ना जरा, कितनी बोझल पड़ती है इंसान के ऊपर जब रात 11 बजे 12 बजे तक अभी इशा के लिए इंतजार में बैठे हुए, और उधर से 2:30 बजे फिर फजर हो रही है। उन गर्मियों की रातों और सुबह में पता चलता है फजर और इशा कितनी भारी है। तो याद रखिए कि अल्लाह ताला कभी भी किसी का नहीं रखता। और अगर इसको सहाबे कराम पे रख के देखें तो अबू तलहा ने तो अपना बाग दिया जिसके अंदर उनकी मनपसंद चीजें भी थी, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। आप जरा सोचें, लोग आज तो मरने के बाद नहीं देते अल्लाह को, वो भी कहते हैं नहीं किसी और को दे देंगे, अगर बच्चे नहीं है तो कोई भाई के बहनों के बच्चे ले लें, फिर भी नहीं देना अल्लाह को। कई लोग, एक सिस्टर एक दफा मिली तो उनका गम क्या था कि हमारी औलाद नहीं है और हमारे पास दौलत बड़ी है और जायदाद भी बड़ी है, तुम्हारा क्या बनेगा। कहने की मुझे किसी ने बताया कि जब अपने बच्चे नहीं होते तो फिर आगे से भाई बहनों के बच्चे या भाई बहनों को मिलता ये है वो है इस तरह। मैंने कहा हाँ जी शरण तो ऐसे ही है ये वो है, तो कहती है समझ नहीं आ रही जिंदगी में तो उनको इतना पसंद नहीं करते, मिलते नहीं तो मरने के बाद हमारी चीजें उनको चली जाएंगी। तो मैंने कहा सिस्टर आपको कोई जगह नहीं मिलती, आप कहाँ दें। कहती कहाँ दें, वल्ला ही ऐसे लग रहा था जैसे जान छुड़ाना चाहती है। मैंने कहा आप अल्लाह के रास्ते में दे दें। कहती अच्छा दे सकते हैं। मैंने कहा मरने के बाद तो आप सिर्फ तीसरा हिस्सा ही देंगी, लेकिन आज दे दें। और ऐसे लग रहा था जान छुड़ाने के लिए तैयार है कि मियाँ भी बीमार है, खुद का भी नहीं पता। तो मैंने कहा अपनी जिंदगी में दे दें, अपनी आंखों से फलता फूलता देखे, आपकी भी आंखें ठंडी हो। कहती अच्छा हमने ऐसे सोचा भी नहीं। कहना चाहिए भोलपन कह लें या बेनियाजी, कहती आज तक ये सोचा ही नहीं है। तो मैं तो आज जाके जरूर अपने मियाँ से बात करूंगी कि ये भी हम कर सकते हैं। सोचो अल्लाह ताला कहते हैं कि सहाबा के दर्जे पे हम क्यों नहीं पा सकते अपने आप को, क्योंकि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी अल्लाह की जात थी। जब तक अल्लाह की जात से मेरी आपकी मोहब्बत सच्ची नहीं है, सब नमाजें भी टकरे हैं, सदके भी एक तावान है, बोझ ही बोझ है दिल पे। हजरत उमर फारूक ने इस आयत पे कहा कि अल्लाह के नबी मुझे खैबर में से जो हिस्सा मिला है इससे बढ़कर नफीस माल मुझे आज तक हासिल नहीं हुआ। जमीनें मिली थी खैबर से और बड़ी फर्टाइल जरखेज जमीनें थी। कहने लगे मैंने इरादा किया कि इसे सदका कर दूं। आपने फरमाया असल अपने पास रखो और इसके फल को अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दो। ये भी आपने मशवरा दिया इनको वक्त के हिसाब से कि जिसको दी जाती ना याद रखे क्या कहते माले मुफ्त दिले बेरह। मैंने तो अब इस चीज पे दिल बांध लिया, किसी को आप कोई मुफ्त में चीज पकड़ाते हैं वो उसकी कोई कदर भी नहीं करेगा, उठा के उसको आगे फेंक देगा। 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए 20 रुपए लगा के आप एक छोटी सी चम्मच भी ले आते हैं ना तब उसको इस्तेमाल करते हैं। मुफ्त में कितनी चीजें मस्जिदों में बढ़ती हैं, बाद में लोग वहीं छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। तो ये जो चीज है ना कि आपने कहा कि असल अपने पास रख ली, इसका मतलब ये था कि तुम इस जमीन की जो इबादत कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता, लिहाजा आपने उसे कहा कि उसके फल को तकसीम कर दो, असल अपने पास रखो। इब्ने उमर कहते हैं, मुझे मेरी लौंडी जिसका नाम मरजाना था बहुत महबूब है, मैं इसको आजाद करता हूँ, और आजाद करने के बाद कहा करते थे, अगर अल्लाह के रास्ते में दी हुई चीज लौटाने की इजाजत होती तो मैं इस लौंडी को लौटा लेता, मुझे वो इतनी प्यारी थी। ये जज्बात का ताल्लुक है, किसी ने कुछ दिया, अब आप और मैं अपने ऊपर लें कि आज इस्लाम को जरूरत है। किस चीज की जरूरत है इस वक्त इस्लाम को? यानी ये तो वो टॉपिक है कि जिसके ऊपर दिल के अंदर से आंसू गिरते हैं। स्किल्स, वक्त, जवानी, माल, ऐसी ऐसी जगहों से गुजर होता है, मैं सोचती हूँ लोगों की जिंदगी में कोई मकसद नहीं है। आज जरूरत है कि हम अपनी औलादों को इसलिए तैयार करें कि वो कल अल्लाह के दीन को सर्व करें। ठीक है, अल्लाह ने माल दिए, वो माल अल्लाह के रास्ते में दें, लेकिन आपके बच्चे दीन को सर्व करें, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। माल दिया, खत्म, आगे से होगा तो फिर आएगा ना। लेकिन जब आप अपने बच्चों को दीन की तालीम पे लेकर आते हैं, और दीन भी कौन सा, कल एक सिस्टर मिली, कल हम एक बहुत ही अच्छी गैदरिंग में गए हुए थे, वहां कुछ एक्सपीरियंसेस हुए, उसमें एक सिस्टर थी, बहुत ज्यादा उनके दिल में तलब थी, छोटा सा लेक्चर था मेरा, वो बात हुई, उसके बाद मेरे पास आ गई, कहने लगी कि आप इधर हैं, ये है वो है, मुझे तो बड़ी तलाश है कि मैं कुछ सीखूं, मुझे आलिमा का शौक है, मैं आलिमा बनूं, तो कोई जगह है इधर? मैंने कहा जी, मैंने बाजी से इनको मिलवाया, आप इनसे बात करें। कहती मैं 2 साल से स्काइप के थ्रू एक कारी साहब से पढ़ भी रही हूँ ऑलरेडी, तो मैंने उनसे कहा कि आकारी साहब मुझे आलिमा बनना है तो मुझे क्या करना है? उन्होंने कहा कि तुम्हें बनाते हैं, 8 साल लगेंगे, तुम्हें 8 साल का कोर्स करवाऊंगा, और फिर उन्होंने उनको किताबों की लिस्ट भेजी कि ये किताबें तुम पढ़ोगी, और उसमें एक किताब जो थी वो फारसी की किताब है। तो कहती मैंने कहा कारी साहब कि ये फारसी की किताब क्या करनी है क्या? उन्होंने कहा कि आलिम बन ही नहीं सकते आप जब तक फारसी की ये बुक नहीं पढ़ेंगे, पर्शियन की। तो मैंने कहा उससे क्या होगा? खरी मुझे नहीं पता, तो मुझे ये बताएं कि वो ठीक जगह से मैं पढ़ने लगी हूँ। और दूसरा डाउट कहेंगी पता नहीं 8 साल मेरी उम्र है भी कि नहीं, अच्छी खासी उधेड़ उम्र, ऐसे ही दरमियानी उम्र, 40-50 से ऊपर ही थी। मैंने कहा आपको ये डील जो 8 साल की, ये 2 साल की लेनी है, बगैर फारसी पढ़े अगर हम आपको आलिमा बना दें तो बनना? कहती ये मुमकिन है? वो फारसी से ऐसे डरी थी जैसे आप लोग आज भी ग्रामर से डरते हैं। तो बहरहाल वो बड़ी खुश हुई, दुआ करें बाद में। कहती बस मेरी सास हॉस्पिटल में, उनके खाने वाने भेज रही हूँ, तो मैं इंशाल्लाह अगले हफ्ते से आती हूँ। सच बताएं, इतनी जरूरत है इस दीन को आम करने की, और हम अभी फारिग हैं। हमारे पास जो कौम दीन को और इल्म को आम करने में मेहनत लगाती है ना, पैसा लगाती है, वक्त लगाती है, स्किल्स लगाती है, उसको तीर तलवारों पे पैसा नहीं लगाना पड़ता। लिख लें ये जुमला, जब कलम खरीदने पे माल लगने लगता है ना, तो तलवारें खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। कैसे, आप कहेंगे इतनी बड़ी बात, समझा के आगे चलती हूँ। तलवारें किस पे चलनी है, सब बोल दें, सबको पता है, दुश्मन पे। अमूमन दुश्मन कौन होते हैं? गैर मुस्लिम, कुफर पे होते हैं। कलम या कागज के जरिए इल्म आम होगा, और इल्म कहाँ पहुंचेगा? गैर मुस्लिमों तक। गैर मुस्लिम और कुफार दीन सीखेंगे, मुसलमान होंगे, जब मुसलमान हो गए तो फैखवानुकुम फिद्दीन, जब वो आपके भाई बन गए, आपने क्या किया? काफिर को नहीं मारा, कुफर को मारा। जुमला लिखिएगा, तलवार से काफिर मरता है, कलम से कुफर मरता है। कौन सी बड़ी अचीवमेंट है? कुफर खत्म करिए, काफिरों को क्यों मारना है हमने? उनको जन्नती बनाकर, अपने भाई बनाकर, बहने बनाकर जन्नत में ले जाइए। लेकिन ये सोई हुई गफलत की गहराइयों में डूबी हुई उम्मत को इस वक्त इस बात की समझ नहीं आ रही। तो लन तनालुल बिर हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, अल्लाह ताला मुझे आपको देता है कि कुछ सोचो, जिस चीज से तुम्हें भी फायदा हो और दूसरों को भी हो, वो फायदे की है या जिससे सिर्फ तुम्हें फायदा हो? आप देखिए ना, जब हम अपनी जात पे खर्च करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हम खुश होते हैं, जिनको दिखाने के लिए पहनते हो खुश होते हैं, वो तो जल जाते हैं, लो आज भी हमारी मेहनत जाया होगी, फलां का जोड़ा हमसे भी अच्छा हो गया, कि उनके तो जज्बात पे ओस पड़ गई। आप अल्लाह के दीन के रस्ते में खर्च करते हैं, कितने बड़े बड़े काम होते हैं, कितने बड़े बड़े काम होते हैं। और याद रखिए, बड़े लोगों की बड़ी बातें, छोटे लोगों की छोटी बातें। बड़ी मंजिलों के राही छोटे छोटे मसलों में नहीं उलझते। अल्लाह ताला ने काला मेयार देकर शायद जन्नत के उन खानों में लोगों को भेजने की तैयारी करवाई है कि जिनको अल्लाह ताला मुकर्रबून कहते हैं, फी गुरुफात इनाम इनून, बड़े बड़े दर्जे हैं। आम दर्जे की जन्नत सबको मिल जाएगी, आला दर्जे की जन्नत के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आला दर्जे की कुर्बानी, आला दर्जे की मोहब्बत। लोग एक शादी पे लाखों के, अब तो करोड़ों लगते हैं, दीन के नाम पे क्या होता है? आज हम सिर्फ अपने लाइफस्टाइल में से इस चीज को देख लें तो हमें यह आयत समझ आएगी तो शर्मिंदगी होगी। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, किस रास्ते में हो रहा है? सूरत अंबिया आयत 90 में अल्लाह ताला ने नेक लोगों का तذکرہ फरमाया, इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैराती व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खाशीन। यकीनन वो नेक कामों में जल्दी करते थे और हमें रगबत और खौफ से पुकारते थे और हमारे लिए आजजी करने वाले थे, यानी सब कुछ खर्च करके भी डरते हैं कि पता नहीं कबूल भी हुआ कि नहीं। एक आखिरी बात जो मेरे और आप सबके लिए, कि सहाबा ने यह आयत सुनी, उनका तो अमल ये था। आज मैं ये आयत सुना रही हूँ तो मेरा क्या अमल है? कोई नेकी की नीयत कर ले, कोई आदत छोड़ दें, कोई आराम छोड़ दें, कोई माल की चीज कर लें, कोई नेकी की नीयत कर लें अपनी तौफीक के मुताबिक कि जो आपने अल्लाह के रास्ते में ऑफर करनी है। असल बात यह है अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। और आखिर में कह दिया कि अल्लाह ताला इसको जानता है, इससे ये एहसास पैदा किया कि दिल की नीयतों को भी अल्लाह जान लेता है। इसलिए मत सोचना कि तुम्हारा दिया बजाया होगा। दुनिया में लोगों को देते हैं तो दिखा के देते हैं, मूवियां बना के देते हैं ताकि लोगों को कल पता चल जाए कि हमने ये बरता था। वो जो सलामियां दी जाती हैं और बरतने की चीजें होती हैं वो क्या? और इसमें इशारा भी है कि अच्छी चीजें दोगे इसको भी जानता है अल्लाह, और बुरी दोगे इसको भी जानता है अल्लाह ताला। दे के खुश हो उसको भी अल्लाह जानता है, और दे के रो रहे हो ये भी अल्लाह को पता है। देने के बाद जतलाते हो ये भी अल्लाह को पता है, और देने के बाद बेनियाज हो जाते हो, जिधर गया मुझे क्या, मैंने तो दे दिया। और कुछ तो इतने बदनसीब होते हैं दे के कहते हैं वापस कर दो, अभी नहीं खर्च हो रहा तो मैं वापस कर दो। ये सिर्फ शैतान के धोखे होते हैं। याद रखिए, आपके घर में एक चीज पड़ी हो वो आपके काम की नहीं है, मेरे घर में पड़ी होगी वो तो काम की बिल्कुल ही नहीं है। अल्लाह के रास्ते में एक चीज आती है उसका फायदा कितना है, और सबसे बढ़कर मैं देखती हूँ जबकि अपने इस्तेमाल में ना आ रही हो चीज। पैसे को लीजिए, बैंकों में पैसा पड़ा है, घर में पड़ा है, रखा हुआ किसी अच्छे काम से रख सकते हैं आप। हज करना रखा हुआ, घर में पड़ा किस काम आ रहा है? आप किसी नेकी की जगह पे रखते हैं कि जी ये यूज कर लें जब तक करना है, जिससे मुझे जरूरत पड़ेगी मैं ले लूंगी, आपका क्या बिगड़ा? बल्कि हिफाजत नहीं करनी पड़ी, चोरी का डर खत्म हो गया, कर्जा देने का अजर हो गया। लेकिन वो चीजें आगे बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेंगी? कई दिन से एक चीज चल रही है, कई साथियों ने भी उसकी तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन अभी पहली चीजें नहीं सीधी पूरी हो रही। तो किसी ने कहा कि ऐसा करें कि सब साथी अपने ही मिलके, जैसे क्लासेस में आप लोग हम सब हैं, तो हम अपनी कुछ ना कुछ जमा की हुई चीजें एक जगह डालें एक अकाउंट में, स्कूल के नाम का एक अलग अकाउंट खोल लेते हैं जिसका नाम ही ये होगा। अब किसी ने लाख जमा किया हुआ, किसी ने 50, जो भी, सब उसमें डालें, हो सकता है वो 2-3 मिलियन हो जाए। तो किसी एक भाई बहन जो किरायों में, आपको तो कितने किराए हैं, 10-15 हजार तो कुछ बात ही नहीं है ना, तो एक को घर ले देते हैं। जैसे वो कमेटी नहीं डाली जाती, वो घर स्कूल का ही होगा, लेकिन वो शख्स, वो सिस्टर, वो ब्रदर उस घर के ओन करेंगे, वो उसकी कीमत का किराया भी स्कूल को देंगे, साथ साथ वो अपना कर्जा देते जाएंगे। इसी तरह जब वो दूसरों को देते जाएंगे, अगले 2-3 महीने बाद वो दूसरे को घर लिया जाए। कितना आसान तरीका है, यानी प्रोजेक्ट बना के कोई लंबी चौड़ी मंजूरियों की जरूरत नहीं होती। ये तो डू इट, थिंक एंड डू इट। सोचा कल पैसे जमा किए, परसों जाके घर ले लें, अगला बंदा दे दे, लिखत पढ़त कर लें। किसी वक्त को बड़ी अमाउंट आ सकती है, इकट्ठा 1 मिलियन ही पे हो सकता है। वो आ जाता है, उसके पैसों का घर उधर से गया उधर गया, और इसमें फायदा भी है, जो किराए हमारे घरों के दूसरों को जाते हैं। देखिए, अगर आप किसी किराए पे रहते हैं तो किसी को दे रहे हैं ना, तो अगर ये घर स्कूल की मलकियत में है, मिसाल है, तो किराया फिर स्कूल को ही आ रहा है, तो वो आपका एक डबल मल्टीपल है। यानी अकल इस्तेमाल करें और सोच के करें, और हम अपने मनी मैटर्स को सीधा रखें। और हमारा क्या गया? कुछ भी नहीं। मुझे पैसे चाहिए, मैं 1 महीना पहले कहती हूँ मुझे 1 लाख वापस चाहिए, मेरा अरेंज कर दें, वो भी अरेंज हो जाता है। वो सारों को कह दें भाई अब इनको 1 लाख हमने अगले महीने देना है कैश, कोई नहीं, सारे अपने घर से फिर कोई 10-10 हजार जमा हो गया, फिर ले आते हैं, लो जी ये इनका 1 लाख दे दें। ये तो एक ट्रस्ट है। किस तरह ये चीजें फैलती हैं, और जितना आप इनको मुश्किल करते जाएं, कॉम्प्लेक्स करते जाएं, फिर काम कोई नहीं होता। मैंने तो अपनी जिंदगी में ये सीखा है कि दिल में ख्याल अच्छा आता है ना, नीयत सही रखो, अल्लाह से मदद मांगो, तरीकेकार करो और कर लो। बहुत लंबा चौड़ा उसके लिए प्रोसेस करते हैं, वो काम आज तक ही नहीं हुए, जो चीज सोची वो गई, उसमें नहीं काम होता। तो बहरहाल ये चीजें वो हैं कि जिसको आप कहते हैं कि हमारा नुकसान भी नहीं होता और फायदा के फायदा ही है। अल्लाह ताला से ये दुआ करें कि हमारे दिल खुल जाए, हमें माल से ज्यादा माल के खर्च करने से और उसकी अच्छी जगह पे इस्तेमाल होता देखने से प्यार हो जाए, और इंशाअल्लाह ताला यही उम्मत मुस्लिमा को चीज आगे बढ़ाएगी। मसाइल जो बताए थे उसका पहला हल लिख ले आज ही, कि अपने माल का सही इस्तेमाल, अपनी ख्वाहिशों के नाम पे नहीं खर्च करो, जरूरत पे खर्च करो, और जो करोगे अल्लाह जानता है।
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم.